बातें करियर की।
मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रेडियो उड़ान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे फैजल और मेरे साथ यहां उड़ान स्टूडियो में मौजूद हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर संदीप बनर्जी सर। सर, आपका हमारे उड़ान स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आई एम रियली ग्लैड कि आज मुझे ये चांस मिला है आपके साथ करने बातें करियर की। सो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि सर इंडिया में ही नहीं बल्कि कई कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्चेस कर चुके हैं। सर, मेरा पहला सवाल है आपसे, आपने इंडिया से बाहर भी कई कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर रिसर्चेस किए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप इंडिया में ज़्यादा है या अदर कंट्रीज़ में?
एग्रीकल्चर ऐसा है कि एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और हर दुनिया में हर जगह ही एग्रीकल्चर का काम होता है, एक्सेप्ट फॉर पोल्स, जैसे साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ के। एग्रीकल्चर का स्कोप जहाँ तक है मेरे हिसाब से डेवलपिंग कंट्री, भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और आगे के दिनों में और भी होने के इम्कान है। स्पेशली जब हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज चल रहा है और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कभी बाढ़ आ रहा है, कभी सूखा पड़ रहा है और आदमियों के भी, आप दुकान में चले जाएं, देखिए 10 साल पहले जो सब्जियां नहीं मिलती थी आजकल वो सब्जियां मिल रही है आपको, वो सब चीज़ें, दूध हो, सब्जी हो, फल हो, सब कुछ वो बन रहा है, तो एग्रीकल्चर का स्कोप है ये।
सर, एग्रीकल्चर में स्टूडेंट का क्या स्कोप है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे?
अभी इंडिया में देखिए, अभी एग्रीकल्चर के दो मूलभूत पहलू है, एक तो है आपके प्राइवेट सेक्टर में, एक है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर का स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में समझ लीजिए अभी आप सीड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में जा सकते हैं। अब कुछ एक जैसे है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी खोल रखा है कि आप बैंक्स में भी जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स के लिए जा सकते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बैंक्स में। अभी विश्वविद्यालय खुल रही है तो विश्वविद्यालयों में जा सकते हैं एज ए इंस्ट्रक्टर। थर्ड जो सबसे बड़ा काम कर सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेयर हाउसेज खोल रखे हैं, वेयर हाउसेज के लिए भी एग्रीकल्चर के कैंडिडेट ज़रूरत है। इनफैक्ट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक सबसे बड़ी पहलू जो की है कि भाई 2020-22 तक तो हमको अपने फार्मर्स का इनकम डबल करना है। अब वो कैसे होगा एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, ये तो लगेगा ही लगेगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और चीज़ जो सबसे बड़ा बोला है वो है कि आपके किसान के लिए क्रेडिट कार्ड्स, किसान के लिए जो आपके इंश्योरेंस, तो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग अलॉट। और उसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास अभी ट्रेंड क्वालिटी ट्रेंड मैन पावर की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास मैन पावर तो है, हमारे पास मैन पावर एग्रीकल्चर में अभी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वी हैव टू मेंटेन द क्वालिटी। क्वालिटी इज वॉट इज रिक्वायर्ड, यही है सबसे। और गवर्नमेंट सेक्टर में पहले जैसे थे ADO थे, या अब आप जाएंगे तो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे ARS है, स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है, वो तो ही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है।
सर, आपने बहुत सरल भाषा में हमको बताया कि इंडिया या अदर कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर का फील्ड कहाँ ब्रॉड है। सर, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, मैं आयुर्वेदा से जुड़ा हुआ हूँ, आयुर्वेदा में भी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस बहुत कुछ है, क्योंकि आयुर्वेदा में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमारे गार्डन में लगे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, क्या आयुर्वेदा को एग्रीकल्चर के साथ लेकर चला जाए तो दोनों फील्ड और अच्छे से ब्रॉड हो सकते हैं क्या? सर
देखिए, आयुर्वेद और बाकी जितने भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, ये लोग हर टाइम प्लांट्स को लेके ही ज़्यादातर हुए, ऑफकोर्स बाकी साथ मिनरल्स भी है, लेकिन प्लांट्स इज अ मेन थिंग। तो आयुर्वेद अगर डेवलप करना है तो एग्रीकल्चर को डेवलप करना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा तो आयुर्वेद कैसे करेंगे? जो पौधे आप लोग मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, उन सब मेडिसिन को अगर हम सही तरह से मेडिसिनल वैल्यू अगर उसको लाया जाए तो उसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च बहुत ज़्यादा है। सो एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेद हैव टू गो हैंड बाई हैंड एंड इन टैंडम। अगर दोनों एक साथ, एग्रीकल्चर विल गिव यू द इनपुट्स, आयुर्वेद इज गोइंग टू गिव यू द आउटपुट्स, यही है सबसे बड़ी बात। एंड एग्रीकल्चर में जो आयुर्वेद के साथ जो अभी और जो चीज़ होनी ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर हैज़ टू गिव यू अ रिसर्च आउटपुट जो विच इज़ नीडेड बाय आयुर्वेद। जो मैं कुछ दिन पहले किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो आपके जो पौधे हैं जिनकी जो गुणवत्ता लिखी गई है, हम लोग क्यों ना उस गुणवत्ता को अपने मार्गदर्शन में रख के, वाई डोंट वी डेवलप समथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट। अभी समझ लीजिए हमने आंवला तैयार किया, आंवला के बारे में आयुर्वेद में बहुत कुछ चर्चाएं लिखी गई और आंवला के गुण एवं आंवला किस तरह से होने चाहिए और आंवला के प्लांट्स की विशेषता लिखी गई। अब जो आयुर्वेद हमारे पास जो आंवला है, क्यों ना हम उसको आधार रख के, आयुर्वेद का आधार रख के हम लोग क्यों ना आंवला के पेड़ तैयार करें जो कि आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के साथ चलता हो, तो हो सकता है कि मेडिसिनल वैल्यू उसके बढ़े।
सर मैं आपको बता दूं, वैसे आंवले को तो आयुर्वेद में अमृत के समान बताया है।
हाँ, तो ये देखिए सब आयुर्वेद में जो, अगर आप जैसे मैं उनसे जैसे बात कर रहा था, तो आंवले का उन्होंने एक गुण भी बताया, प्लस आंवले के पेड़ का किस तरह का पौधा होना चाहिए, किस तरह का फल का भी वर्णन दिया गया है। अब हमको जब वो वर्णन मिला है आयुर्वेद से, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट मैं अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ, मैं अभी उस टाइप के फल ढूंढूंगा जो कि आयुर्वेद के सिद्धांत में लिखा गया है, और फिर उस फल के जो है न्यूट्रिशन वैल्यू देख के देखते हैं कि वाकई उसमें जो आयुर्वेद की किताबों में लिखा गया है उस टाइप के ही गुण दिखते हैं या नहीं, और अगर दिखे तो उसको मल्टीप्लाई करना है, और क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तब इसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे गुण आते हैं, तो आयुर्वेद एंड एग्रीकल्चर हैव टू गो टूगेदर। आंवला वॉज एन एग्जाम्पल, अदरवाइज बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स अभी थ्रेटन कंडीशन में चल रहे हैं, बहुतों का भी हालत ऐसा है कि भाई दे आर इन द इंटरनेशनल रेड लिस्ट कि भाई ये मेडिसिनल प्लांट्स अभी वो खत्म होने वाले हैं, तो क्यों ना उनको अभी रिट्रीव किया जाए, जेनेटिकली हम लोग उसको आइडेंटिफाई करें और उसका कंजर्वेशन करके उसका मल्टीप्लीकेशन करें ताकि आयुर्वेद को भी मेडिसिन प्लांट्स मिल पाए, बिकॉज आयुर्वेद इज अ ग्रोइंग सेक्टर। आयुर्वेद ही नहीं, आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी में भी मेडिसिन प्लांट्स लगते हैं, यूनानी में भी लगते हैं, सिद्धा में भी लगते हैं, तो सब कुछ में एक साथ हो सकता है, क्यों नहीं।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आयुर्वेदा और एग्रीकल्चर को अगर हम साथ में लेके चलेंगे तो हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो जो पेशेंट होता है उस पर जो हम हर्बल प्लांट्स का जो पार्ट्स यूज़ करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट तभी मिल पाएगा जब हम एग्रीकल्चर विधि से उसको पूरा इम्प्लांटेशन करके और पूरा उसको ग्रो करके और प्रॉपर उसको यूज़ करेंगे। तो सर अगला सवाल मेरे साथ साथ और लिसनर्स भी ये जानना चाहते हैं कि आपको इस फील्ड में आने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला।
एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरा घर कलकत्ता के पास जो घर है वो कल्याणी बोल के एक जगह है और कल्याणी के पास ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स पहले छोटे, जब मैं छोटा था तो वो देखते थे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले गाड़ियाँ जाती थी और दे यूज़ टू लाइक इट, एंड तब उनको लगा कि क्यों ना इनके लड़के को, एक जने को एग्रीकल्चर में भेजा जाए। जब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज पंतनगर में पहुंचा तो सबसे पहला चीज़ मैंने किया देखा कि मेरे को आगे क्या करना है, और मेरे को जैसे मैंने कहा कि मैं पशु प्रजनन का आदमी हूँ, तो मैंने कहा कि मैं आगे पढ़ूंगा तो पशु लेके ही पढ़ूंगा, सो उसके लिए मुझे एग्रीकल्चर भी पढ़ना था।
थैंक यू सर, आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, मेरे को तो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी और मैं समझता हूँ जो भी लोग इस ऑडियो को सुनेंगे वो भी काफ़ी इंस्पायर होंगे इस चीज़ से। सर जैसा कि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर में आते हैं तो उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है, तो जो शहरी क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं जो शहर से बिलोंग करते हैं तो उनको हम कैसे अवेयर कर सकते हैं कि आप लोग इस क्षेत्र में भी आइए, क्योंकि उन लोग को एग्रीकल्चर के बारे में काफ़ी कम नॉलेज होता है।
अब देखिए गांव में जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो ये क्रॉप्स जैसे जैसे धान हुआ, पैडी हुआ, सोयाबीन हुआ, वो सब के बारे में जानते हैं, लेकिन शहर में समझ लीजिए हॉर्टिकल्चर का स्कोप, अभी अगर आप घर में किसी के घर में भी जाएँ ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 70-80% आदमी के घर में कोई ना कोई एक गमला जरूर मिलेगा और गमले में कोई ना कोई पौधा जरूर मिलेगा, और वो गमले और पौधे का जो बात है उससे अगर उसका अगर हम लोग बढ़िया नर्सरी कोई खोल सकता है तो शहरों में तो बहुत अच्छा चलेगा वो। हाँ, जैसे मैंने कहा है क्वालिटी हैज़ टू बी मेंटेन, क्वालिटी मेंटेन करिए शहर में आपका नर्सरी बहुत अच्छा चले, और ये शहर के इसके अलावा भी आप देखिए जैसे आप गाँव से जैसे फ्रूट्स आते हैं वेजिटेबल्स आते हैं उनके देखिए किस हिसाब से पैकेजिंग हो, किस हिसाब से वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दुकानों में पहुंचे, किस हिसाब से उसका मतलब क्वालिटी मेंटेन करके उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाया जा सके, शहरी कर लड़के तो यही सब तो कर सकते हैं।
थैंक यू सर, आपके इस जवाब के बाद मेरे को लगता है कि जो लोग ऐसा सोचते थे कि एग्रीकल्चर का मतलब खेती किसानी, और नॉर्मली जहाँ तक देखा है कि लोग एग्रीकल्चर को एक हीन दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इस जवाब के बाद कहीं ना कहीं वो इस आपके आंसर से इंस्पायर हुए होंगे। सर, यदि MGU के बारे में हम बात करें तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड उनके कितने ड्यूरेशंस हैं, कितना समय लगेगा एक स्टूडेंट को अच्छे से इस फील्ड का व्याख्याता बनने में?
मानसरोवर में अभी हम लोगों के पास डिप्लोमा है एग्रीकल्चर के लिए, फिर उसके बाद हमारा भी बैचलर्स चल रहा है, बैचलर्स इन एग्रीकल्चर चल रहा है, वो ऑलरेडी सेकेंड बैच चल रहा है। हमारे पास MSc है, MSc में एग्रोनॉमी है, MSc में प्लांट पैथोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर है, अभी हम लोग और भी फील्ड्स खोलने की सोच रहे हैं। और उसके बाद अगर MSc में जैसे क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन लाइफ स्टॉक है, तो अगर उसमें डेयरी हुआ या पोल्ट्री हुआ वो भी हम लोग अगले बार सोच रहे हैं कि उसमें कोई कैंडिडेट्स अगर आए तो वो आ सकते हैं। हमारे पास PhD भी है, जैसे PhD में भी हमारे पास स्टूडेंट्स है, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स है, एग्रोनॉमी के स्टूडेंट्स है, पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स है, एक्सटेंशन के स्टूडेंट्स है, तो ये मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी दे रहा है। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की अभी एग्रीकल्चर की जितने सारे क्लासेस हैं, शायद मेरे हिसाब से भोपाल या आसपास के जगहों में भी ऐसे नहीं होंगे, जैसे सब स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सब स्मार्ट क्लासरूम्स एंड everything is being given to them, the students in form of PDF या उनके e-books दे दिया जा रहा है। और e-library में कम से कम हमारे पास एग्रीकल्चर के अभी 2000 के आसपास किताबें हमारे पास हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा हमारे पास आयुर्वेद के भी किताबें हैं, हमारे पास डेंटिस्ट्री की किताबें हैं, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड ई लाइब्रेरी है, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अभी जो मैनेजमेंट का भी काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है, हमारे पास मैनेजमेंट्स हैव बीन हेल्पिंग अस फॉर वॉट एवर वी आर रिक्वायरिंग एंड वी आर थैंकफुल टू द मैनेजमेंट, और आशा करते हैं आगे आने वाले दिनों में भी हमको मिलता रहेगा। तो लड़के जो लोग BSc एग्रीकल्चर यहाँ से पास करेंगे या जो लोग पढ़ रहे हैं, आई थिंक दे विल बी स्टडिंग समथिंग न्यू जो कि आसपास के जगह में भी शायद नहीं मिल पाए।
सर, अब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डीन हैं और आप इतनी सारी कंट्रीज में रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट हम लोग कुछ नया ही सीखने को मिलेगा आपसे। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी रिसर्च के टाइम नीदरलैंड एंड कोलोन में रहे, तो वहाँ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप यहाँ हमारे स्टूडियो में शेयर करना चाहते हैं?
देखिए, उन सब बाहर के मुल्कों में और हमारे मुल्कों में एक चीज़ है कि बाहर के मुल्कों में एग्रीकल्चर इज मच मोर मैकेनाइज्ड, वहाँ पे एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इज बेसिकली बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर और यार उस बेसिस पे हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैन पावर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, अनलाइक इंडिया जहाँ पे मैन पावर इज मच चीपर देन बिफोर। लेकिन उन सब मुल्कों में एक चीज़ ज़रूर है कि उनके पास क्वालिटी मैटर्स फॉर देम, इट्स नॉट ओनली द क्वान्टिटी बट क्वालिटी मैटर्स फॉर देम। अगर हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स निकाल सकें अपने यहाँ से, देर इज़ अ लॉट ऑफ मार्केट अब्रॉड। एग्रीकल्चर पहले तो हम लोगों ने सिर्फ गांव देखते थे, फिर हमने शहर देखा, फिर अब मुल्क देखे, लेकिन आफ्टर WTO एंड हमारे पास हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने जाने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं पे भी आप भेजें, आपको क्वालिटी की, और इंटरनेशनली जहाँ पे अभी है इंटरनेशनल कंपटीशन इज हाई, क्योंकि अगर आप जिसके पास अच्छा क्वालिटी है उसका कहीं ना कहीं मार्केट तो है। यूरोप इज़ अ वेरी बिग मार्केट, जापान इज़ अ वेरी बिग मार्केट, सिर्फ क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड, और उस क्वालिटी के लिए यू रिक्वायर क्वालिटी एजुकेशन, यू हैव टू बी ट्रेन, यू हैव टू नो एग्जैक्टली क्या मापदंड है उस क्वालिटी को ऑब्टेन करने के लिए। और जब तक आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप उस क्वालिटी को मीटअप नहीं कर पाएंगे, और अगर क्वालिटी मीटअप नहीं कर पाएंगे देन वी आर लेफ्ट बिहाइंड, है ना। देखिए, अभी अब्रॉड में जितने भी यूनिवर्सिटी है यूरोप के, उन लोगों के पास स्कॉलरशिप्स काफ़ी अच्छे खासे स्कॉलरशिप है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे जापान जर्मनी के लिए जैसे डैट स्कॉलरशिप्स है, नुफिक है जैसे आपका नीदरलैंड्स के लिए। अगर आप समझ लीजिए कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाए, वहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई स्टूडेंट जाता है, दे डोंट टेक एनी ट्यूशन फीस फॉर हायर स्टडीज, कोई ट्यूशन फीस नहीं, आप बिना ट्यूशन फीस पढ़ सकते हैं। आप अगर अमेरिका में जाए, देर आर लॉट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जहाँ पे वो लोग दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट्स हु आर प्रॉपरली क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड। सो स्कोप तो इंटरनेशनली बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अभी समझ लीजिए मेरे साथ मेरा खुद का बैचमेट है, वो अभी एक कंपनी है समझ लीजिए पायोनियर एग्रो बोल के, Sharad Khurana is basically my batchmate, and he is now looking after Southeast Asia. He's looking after Southeast Asia, and there are many top notch in Indian agriculture who are basically in different fields. जो लोग मेरे खुद के बैचमेट रहे हैं. प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन, ये दो चीज चाहिए. अगर ये दो चीज करें, दुनिया आपके मुंह. मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं एक ही कहता हूँ जिन लोगों को पढ़ाता हूँ कि डोंट कीप एनी कन्फ्यूजन्स इन योर माइंड. जो है पूछ लो. अपने क्लास से बाहर कोई कन्फ्यूजन लेके मत जाओ. और डेयर टू ड्रीम. सपने देखोगे, मेहनत करोगे तो सपना पूरा होगा.
धन्यवाद सर अपना इतना कीमती टाइम हमें देने के लिए, और कई अच्छी और नई बातें सीखने को मिली हमें आपसे. सो लिसनर्स, आगे फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरी बातों के साथ. यूं ही मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आरजे फैजल को, और यूं ही सुनते रहिए रेडियो उड़ान MGU. थैंक यू.
अब होंगी बातें करियर की.